ओम शांति। मीठा बाबा हम सभी बच्चों के गले में गुणों की माला पहना रहे हैं, सबका अच्छा श्रृंगार हो रहा है। दिव्य गुण हमारा सबसे अच्छा श्रृंगार है। तो आज जो ये दोनों विषय रखे हैं हमारे जीवन में, दोनों की बहुत 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 आवश्यकता है और इसके आधार से हम अपनी बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। स्वच्छता के पहले मैं हर्षित मुक्ता के विषय में आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि हर्षित मुख सबको बहुत आकर्षित करता है और अगर सामने वाला हर्षित न हो और कोई ज्ञान सुना रहा हो, डांस कर रहा हो, तो उसका ज्ञान सुनाना, उसका डांस करना ही रुक जाएगा। साकार बाबा की मुरली में आप सभी सुनते हैं कि अगर बाबा के सामने कोई ऐसे ही तवाई की तरह से बैठा हो, मूंझा मुरझाया हुआ, तो बाबा कहता था इसके आगे मैं क्या डांस करूं। ज्ञान डांस करने के लिए तो सामने बैठे वाले कितना हर्षित होते हैं, कितना वाह वाह करते हैं, हेयर हेयर करते हैं, तब ज्ञान डांस अच्छी होती है। तो बाबा साकार में भी हर्षित बच्चों को देख करके बहुत हर्षित होते थे, खुश होते थे। मैं आपको दो बातें, दो दृश्य सुनाता हूँ अव्यक्त बाबा के। एक दिन बाबा इसी डायमंड हॉल में आए थे, हम लोग लाइन में जो आगे आगे केबिन्स में होते हैं, कोई अपनी कोई सेवाएं करते हैं, कोई 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 ऐसे भी बैठे रहते हैं। तो बाबा की नजर दो भाइयों पर ऐसे अचानक गई, दृष्टि देते ना बाबा पहले पहले, तो एक भाई एकदम ऐसे बैठा था निराश उदास जैसे, मतलब चेहरे पर जरा भी भगवान सामने आया हुआ है, दृष्टि मिल रही है, उसके चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, मूंझा हुआ लगता, क्योंकि अंदर जो होता है वो बाहर दिखाई देता है ना, अंदर का दर्पण क्या है, चेहरा ही है ना। तो बाबा ने उसको सामने बुलाया, ऊपर बुला लिया स्टेज पर, क्या सोच रहे हो, कहाँ बुद्धि है। तो बेचारा वो सकपका गया कि बाबा ऐसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बाबा को तो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे चाहिए। अगर जरा भी कोई उलझा हुआ मुरझाया हुआ होता है तो बाबा की मुरली रुक जाती है, चलती नहीं है। ऐसे ही एक बार क्या किया, हमारी दादी जी ने, संख्या ज्यादा होने लगी, बढ़ने लगी, तो दादी जी ने एक बार डायरेक्शन लिखवाया कि पुरानों को नहीं आना है, नए बाबा के बच्चे आने चाहिए। तो सब नए आने लगे, पुरानों को आने की मना हो गई। तो बाबा सामने दिखता था तो कोई के चेहरे पर कोई रौनक नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, ऐसे लगता ही नहीं ये लोग बाबा को पहचानते हैं, नए नए बच्चे पहली पहली बार कोई आए, क्या जाने कि भगवान इसके अंदर आया हुआ है, ये वो महफिल है आत्मा परमात्मा के मिलन की, कितना हर्ष होगा आप सोच सकते हो, कितनी आंतरिक खुशी प्रफुल्लता चेहरे से दिखाई देती है जब बाबा आते हैं, तो क्या लहर होती है, क्या माहौल होता है। तो बाबा एक दिन तो मुरली चला दिया ऐसे ही, दूसरे दिन गुलजार दादी के द्वारा संदेश भेजा कि बच्ची को बोलो भले नयों को बुलाओ लेकिन आगे आगे पुरानों को बिठाओ। संदेश आया खास कि पुरानों को बिठाओ जो पहचानते हैं बाबा को, जिनको नशा चढ़ता है कि भगवान की दरबार में हम बैठे हैं, उनकी दृष्टि मिल रही है। तो फिर दादी ने दूसरी बार ऐसा ही किया कि जो पुराने पुराने थे सबको कहा आप लोग आगे बैठो और नयों को पीछे बिठाया, क्योंकि वो पहचान, वो नशा, वो चेहरे पर रौनक चाहिए। तो हम सभी भी अपने आप को ये चेक करते रहें कि हम कितना हर्षित मुख, हर्षित चित्त, चित्त भी अंदर हर्षित चाहिए ना, अंदर की हर्षित चित्त की निशानी हर्षित मुख है। और देवताओं का चेहरा देखो आप, कितना हर्षित मुख बनाते हैं मूर्तिकारों ने, चित्रों के अंदर भी उनकी प्रसन्नता उनकी खुशी चेहरे पर दिखाई है। तो संगम युग पर हम सब अभ्यास करेंगे तब तो ऐसे चेहरे हमारे बनेंगे ना। तो सतयुग के देवताओं के चेहरे कैसे हैं, संगम पर हम सबको रिहर्सल करनी चाहिए। और उस रिहर्सल के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि कल के वरदान में बहुत अच्छी बात थी कि विष्णु से शैया पर लेते हुए हैं, हर्षित हो रहे हैं, सागर के लहरों के बीच में सांपों की शैया, आराम की मुद्रा, टांग पर टांग चढ़ी हुई है, कभी कभी ब्रह्मा बाबा का उपोज, सवेरे सवेरे बाबा 2 बजे उठ करके टांग पर टांग चढ़ाया हुआ है, लेटा हुआ है। कोई बच्चे आते थे, बच्चे बाबा तो ज्ञान मंथन कर रहा है, बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहा है, सवेरे सवेरे भोजन तैयार कर रहा है। तो बाबा सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान मंथन पर बहुत जोर देते हैं। जो ज्ञान का अच्छा चिंतन करता है, बाबा से बहुत अच्छी मीठी मीठी रूह रिहान करता है, बातें करता है, अपने भाग्य के ऊपर नजर डालता है, भगवान कैसे हमारा भाग्य बना रहे हैं, तो नशा चढ़ता है, वो नशा वो खुशी वो चेहरे से झलकने लगती है। तो अपने आप को हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छे विचार ज्ञान के चिंतन में चले जाओ, खूब अच्छी अच्छी बाबा से बातें करो, रूह रिहान करो, चेहरे पर और रौनक दिखाई देगी, उदासी गायब हो जाएगी। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे, खुशी या प्रसन्नता गायब होने का एक कारण है, हम लोग कभी कभी एक दूसरे के पार्ट को देख करके क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं, ऐसा ही क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां पर हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा की नहीं रहती, हम सीट पर बैठ करके इस ड्रामा के हर एक्टर के पार्ट को नहीं देखते, वहां पर अंदर की खुशी गायब हो जाती है। अगर हम सदा हर्षित रहना चाहते हैं तो हर आत्मा का अपना अपना रोल है इस ड्रामा के अंदर, और बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट अपनी विधि से अपने अनुसार वो बजा रहा है। हर एक की विशेषता पर नजर जाए, हर एक के गुणों पर नजर जाए, तो किसी के पार्ट को देख करके अंदर से हलचल नहीं होगी। और अगर अंदर अंदर प्रश्नों में उलझ गए तो बाबा कहता है जहां प्रश्न है वहां पर प्रसन्न चित्त स्थिति नहीं रहती। इसलिए हम सबको देखना चाहिए कि कोई भी दृश्य को देख करके, किसी भी आत्मा के पार्ट को देख करके प्रश्नात्मक बुद्धि तो नहीं बनती है, क्वेश्चन तो नहीं उठते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए, कई प्रकार के, क्योंकि थोड़ी समझ बुद्धि अच्छी होती है, अनुभव हो जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं, तो लोगों को देख करके अनेक प्रश्न उठाने लगते हैं, ऐसे ये क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहता है अगर सदा प्रसन्न चित्त, सदा हर्षित चित्त रहना है, हर्षित मुख रहना है, तो सब प्रश्नों से पार रहो, कोई भी प्रश्नों में उलझने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आज के वरदान में क्या था, बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ, उल्टा चक्कर चल गया तो परदर्शन हो जाएगा, और परदर्शन करने वाली आत्मा कभी भी हर्षित नहीं रह सकती, प्रसन्न नहीं रह सकती। इसलिए प्रसन्न चित्त स्थिति के लिए हम सबको बहुत अंदर की स्थिति ज्ञानी नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की बनानी है। बाबा कैसे प्रसन्न रहता है, आप लोगों ने बाबा के पार्ट को सामने से देखा है, अव्यक्त बाबा के पार्ट को, हमने भी बाबा के पार्ट को, मैं समझता हूँ जब से बाबा का पार्ट हमने अटेंड किया है 71-72 से, कोई भी मुरली कोई भी समय 1-2 घंटा भी मेरा मिस नहीं हुआ है, बाबा 12 घंटा 14 घंटा बैठा है, रात का समय है, सबको नींद आ रही है, लेकिन बाबा के चेहरे पर देखो क्या प्रसन्नता है, कितना हर्षित है, एकदम बच्चों का भाग्य देख रहा है, बच्चों की विशेषताएं देख रहा है, एक एक सामने आता है उसका वर्णन कर रहा है। तो बाबा के चेहरे पर कभी भी 12-14 घंटा बैठने के बाद भी जरा भी न उदासी देखी, न नींद का लहर देखी, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशनुमा चेहरा, खुश जैसे एकदम खुशी के अंदर चेहरे से रौनक वो अंदर की दिखाई देती है। तो बाबा तो अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी यही है कि हम सब नॉलेज फुल बने, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहें और अपने आप को सब खजानों से भरपूर करें। जिसके पास खजाने होते हैं ना, उसको बहुत नशा रहता है, बहुत अंदर की खुशी रहती है। और हम सबको तो बाबा ने इतने अविनाशी खजाने दिए हैं, कितना वंडरफुल ज्ञान का खजाना हम सबके पास है, गुणों का खजाना कितना है। मैं देख रहा था, मेरे को 3 दिन के अंदर 6 गुणों पर विशेष क्लास कराना पड़ा। गुजरात के कुमारों की भट्टी में सत्यता और पवित्रता पर क्लास हुआ, अपने शांतिवन की भट्टी में आज धैर्यता और सहनशीलता पर क्लास हुआ, और अभी हर्षित मुक्ता और स्वच्छता पर क्लास है। तो चिंतन तो चलता है ना, बाबा कितना गहराई से इन गुणों से हमारा श्रृंगार कर रहा है, कितने अच्छे अच्छे गुण हमारे जीवन में आए हैं। सिर्फ क्लास नहीं कराना है, चिंतन नहीं करना है, लेकिन अपने आप को चेक करना, क्या मैं सदा हर्षित रहता हूँ, इतना अंदर से प्रसन्न हूँ कि बाबा आपने मुझे क्या दिया है, कितना माला माल बनाया है, धनवान बनाया है, संपत्तिवान बनाया है। ये बाबा जो वरदान देता है, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, ये जो वरदान हम सबको मिले हैं संगम पर, उनका अनुभव अभी करने की जरूरत है। भविष्य में किसने न वर्णन है न उसकी भेंट है, और जब भेंट ही नहीं है तो कैसे कहेंगे हेल्दी हैं या वेल्दी हैं। संगम पर भेंट है, दिखाई दे रहा है कि बेचारे के पास कुछ नहीं है और हमको बाबा ने इतना सब कुछ दे दिया है। तो जब अंदर से इन अविनाशी खजानों का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, श्रेष्ठ चरित्र का, खुशी का खजाना अंदर अंदर उमड़ता है, तो चेहरा तो अपने आप प्रसन्न रहता है। तो इसलिए हम सब चेहरे को अपने चेक करते रहें कि अंदर की प्रसन्नता चेहरे से झलकती है या कहीं उलझे हुए हैं, कहीं मूंझे हुए हैं। प्रश्नों में बहुत सारे उलझने की जरूरत नहीं है। कभी कभी देखो एकदम ये जो स्लेट है ना, बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, क्लीन है, तब बाबा उसमें कुछ लिख सकता है। तो हम सब पहले हर्षित चित, हर्षित मुख, प्रसन्न चित रहने के लिए ज्ञान का डांस करें, ज्ञान का चिंतन करें, ज्ञान का सुमिरन करें, और जो हो रहा है होने दो। ड्रामा की हर सीन में कुछ न कुछ राज हैं, कुछ न कुछ कल्याण समाये हुए हैं। इसलिए इन दृश्यों को देख करके उलझना, मूंझना, घबरा जाना, भयभीत हो जाना, बाबा कहता है इससे आपकी खुशी गायब हो जाएगी। तो ध्यान देने की जरूरत है कि बाबा ने अपने बच्चों को बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह बनाया है, और जो बेफिक्र है, बेगमपुर का बादशाह है, उसका चेहरा कैसा होगा, कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज। और स्वच्छता के लिए तो बाबा ने हम सबको कितना गहराई से स्वच्छता का ज्ञान दिया है, शायद ब्राह्मणों जैसी स्वच्छता किसी ने भी अपनाई नहीं है। कितने भी स्वच्छता अभियान निकाले जाएं, स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाएं, वो बाह्य स्वच्छता तो जरूरी है, देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मच्छर मक्खियां कितना रोग पैदा करते हैं। इसलिए कहते हैं भाई साफ स्वच्छ रखो, बाहर का वातावरण, घर गली मोहल्ला सब साफ करते हैं, उसके लिए अभियान निकालते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट इतने खर्चे कर रही है, वायु प्रदूषण न हो, पानी का प्रदूषण न हो, ध्वनि का प्रदूषण न हो, सब वातावरण में शुद्धता है, स्वच्छता है, उसके तो कितने प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के पीछे क्या है, हमारी आंतरिक स्वच्छता। बाबा ने हम सबको कितना ऊंचा सच्चा ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण माना जो स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है। पहला पहला क्या समझ दी कि हे आत्मा, मेरी प्रिय मूर्ति, तेरा ये मंदिर जो है ये साफ स्वच्छ होना चाहिए। इस शरीर रूपी मंदिर में कौन विराजमान है? एक मुरली बाबा की चली थी कि जो मेरी प्रिय मूर्ति है आत्मा, वो चैतन्य मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, तो शरीर रूपी मंदिर को सवेरे सवेरे स्वच्छ करना, अच्छी तरह से स्नान करना, तैयार होना। इस मंदिर में वो मूर्ति रहती है, भगवान की प्रिय मूर्ति। इसलिए देखो कितने नियम बनाए हैं बाबा ने कि कोई भी जो लेट्रिन के कपड़े हैं वो दोबारा नहीं टच करना, वो नहीं पहन लेना, पहने हुए कपड़े एक बार पहन लिए दोबारा उनको नहीं पहनना, उनको धुलाई करके ही पहनना। तो ऐसे तन की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, जिस स्थान पर हम रहते हैं कमरों की स्वच्छता। स्वच्छता तो ऐसे नहीं दिखावा करने के लिए, बाबा कहता है स्वच्छता माना सिंपल सिटी, सिंपल सिटी रॉयल ब्यूटी। जो जितना घर बहुत सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, उनमें स्वच्छता झलकती है, दिखाई देती है। और जहां पर बहुत बहुत सामग्री होती है, बहुत सामान होता है, वो कितना भी स्वच्छता का प्रयास करे लेकिन वो कहीं ना कहीं तो इधर उधर बिखर जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें बाह्य स्वच्छता का भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, समझ दी है। लेकिन इसके साथ साथ मन मंदिर है, जैसे तन मंदिर है ऐसे ही मन मंदिर में हम बाबा को बिठाते हैं। आपको दादी जी की, गुलजार दादी जी की क्लासेज याद आती होंगी, बाबा को दिल में बिठा लो, दिल में बिठा लो। बहुत समय ये क्लासेज 2-3 साल दादी ने लास्ट में कराई, बाबा की मूलियां भी इस पर चलने लगी कि हर एक अपने दिल में बाबा को बिठा लो। और फिर दादी मुस्कुरा करके कहती थी, भगवान को दिल में बिठाने के लिए दिल कितना स्वच्छ चाहिए, कितना साफ चाहिए। जरा भी गंदगी होगी तो बाबा आएगा क्या? दिल पर बैठेगा? आज कड़े कोई बड़े VIP को बुलाते हो, कोई मिनिस्टर्स को बुलाते हो, उसके लिए कितना ध्यान रखते, हर चीज साफ हो, स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो, तब वो अंदर आए। कितनी पहले से ही तैयारी करते हैं। तो हम सभी भी ध्यान दें, क्योंकि मधुबन में भी जब ये योग शिविर शुरू हुए ना, शुरू में 12 लोगों से शिविर शुरू हुआ था, शायद सुनाया हो, आप लोगों ने सुना हो। जब हमारा राजयोग भवन बना पांडव भवन में, तो उसमें रहने की व्यवस्था 12-15 की ही थी, कुछ सेवाधारी और कुछ पार्टी। तो उसमें पहला शिविर 74 में शुरू हुआ और उसमें 12 लोग आए, गुजरात से ही बुलाए गए पहले। वो 12 ही निकले ज्ञान में, चल गए। लेकिन उनके लिए दीदी दादी ने हम लोगों को इतनी गाइडेंस, इतना ध्यान खिंचवाया, कहीं पर भी कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, सारा भंडारा साफ करवाया, रास्ते साफ करवाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े VIP आ रहे हैं बाबा के घर में। तो ध्यान देते थे कि कोई भी आता जाता बहुत अच्छी सफाई हो, क्योंकि वही सफाई ही अच्छी लगती है, सबको आकर्षित करती है, खींचती है। तो बाह्य स्वच्छता तो हम सब बहुत ध्यान से रख रहे हैं, शांतिवन में भी है, पांडव भवन में भी, सब स्थान बाबा के बड़े स्वच्छ साफ क्लीन रहते हैं। लेकिन मन के अंदर भी, दिल के अंदर भी किसी के प्रति व्यर्थ न चले, नेगेटिव न चले, उलझन न हो, गंदगी न हो किसी भी प्रकार की। क्योंकि कभी ईर्ष्या के कारण, कभी घृणा के कारण, कभी कोई वैर विरोध के कारण हम कईयों की बातें अंदर अंदर रख लेते हैं, और अंदर अगर वो बातें रह गई और चलती चलते वो कीचड़ बना देती हैं। जैसे कोई पानी कहीं गिरता जाए तो वहाँ कीचड़ इकट्ठा हो जाता है ना, तो ऐसे ही हमारे दिल में, बुद्धि में कई बार कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, और उस कीचड़ के अंदर बाबा की याद भी नहीं रह सकती, और बाबा तो कैसे आएगा इस दिल आसन पर बैठेगा करके। तो हम सबको अगर बाबा का वाहन करना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, अपने दिल आसन पर बिठाना है, तो दिल को बड़ा साफ स्वच्छ पवित्र रखना। जरा भी किसी के प्रति नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं। जब हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसका अपना ये रोल है, तो किसी के रोल को देख करके मैं अपने दिल को खराब क्यों करूं? तो दिल की स्वच्छता, भावनाओं की स्वच्छता, चित्त की स्वच्छता भगवान को बहुत आकर्षित करती है। अपने आप मन एकदम निरोगी बन जाता है, कोई बीमारी उसमें मच्छर घुसते ही नहीं है, कीड़े आते ही नहीं है जो कोई कीटाणु अंदर चला जाए। इसलिए हम सब बहुत ध्यान दें, मन में बड़े शुद्ध पवित्र संकल्प, शुभ भावना वाले संकल्प इमर्ज करो। जब शुभ भावनाएं रहती हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो एक अंदर से मन बड़ा स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। और मन मनाभव होने के लिए बहुत निर्मल मन चाहिए। जरा भी मन के अंदर इधर उधर की बातें अगर हैं, तो आप देखते हो योग में कितना लोगों को मेहनत लगती है, बैठते हैं आकर के योग में आधा घंटा ऐसे ही सफेद लाइट हो जाती है, कहते क्या करूं, बैठा तो बाबा के इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे संग में, लेकिन मेरा योग नहीं लगा। नहीं लगा कारण क्या? योग लगाने वाली जो शक्ति है वही स्वच्छ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, किसी की बातें उस मन के अंदर भरी हुई है, वो फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो ये करता है, वो मेरे साथ ठीक नहीं करता है, बहुत सारी बातें सोच सोच करके मन को मैला बना देते हैं। इसलिए मन को मैला बनने नहीं देना, बुद्धि को बहुत निर्मल रखो, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि एकदम स्वच्छ बन जाती है, पवित्र बुद्धि है। एक बार जब बाबा ने मुझे वरदान दिया ना, तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला, तो मैं सोचने लगा ये बाबा ये दिव्य बुद्धि का वरदान मुझे दे रहे हैं, बहुत बड़ा वरदान दे रहे हैं। तब बाबा ने तुरंत उसका जवाब दे दिया कि बच्चे तूने अपनी बुद्धि को कहीं पर भी व्यर्थ में लगाया ही नहीं है, सदा स्वचिंतन किया है, स्वस्थिति बनाई है और दूसरों के स्वचिंतन के प्रति सोचा है, इसलिए बुद्धि दिव्य बनती गई है और बुद्धि को वरदान मिलता गया है। ये वरदानी बुद्धि जो चाहे वो कर लेगी। मुझे उस समय से भूलता नहीं है कि बाबा का बुद्धि को वरदान मिला हुआ है। और वरदान पाया कैसे है, सभी ले सकते हैं। बाबा तो बच्चों को जन्म से ही ये वरदान देने आया है, दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि। नेत्र है अनुभव का और बुद्धि है हमारी अपनी जजमेंट, निर्णय करने की शक्ति। हर आत्मा की जितनी स्वच्छ बुद्धि होगी ना, उतना समय पर ठीक निर्णय होगा। आज जो व्यक्ति धोखा खा रहा है, दुख उठा रहा है, चाहे संबंधों में चाहे लोगों से, उसका मूल कारण है परख नहीं सकता। और परखने की शक्ति ना आने का कारण है उसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, दिव्य नहीं है। स्वच्छ बुद्धि को फट से बाबा की बातें टच हो जाएंगे। अगर हमको बाबा की टचिंग को कैच करना है, बाबा तो टच कर रहा है हर बच्चे को, क्योंकि बाबा हमारा हमारे को टच नहीं करेगा तो किसको करेगा, हर एक बच्चे को कर रहा है। लेकिन बच्चा अगर अपनी बुद्धि में इधर उधर की बातों को भरा हुआ है, सोच रहा है, तो बाबा कहता मैं तो टच करता हूं, वो कैच ही नहीं करता है, क्योंकि अपने उसने बुद्धि का रिसीवर उतार के रख दिया, वो इधर उधर बुद्धि को इंगेज कर दिया। अब इंगेज हो फोन तो कितना भी कोई घंटियां बजाता रहे, तो बाबा कितना भी हलो हलो ऊपर से करे, लेकिन हमने अपनी बुद्धि को कहीं न कहीं इधर उधर की बातों में, ये आज हुआ वो हुआ, सरकार ने ऐसा किया, दुनिया में ये चल रहा है, बहुत सारे संसार समाचार जो सुनते हैं ना, उनकी बुद्धि में दिन रात वही चलता है। स्वप्न में भी शायद वही देखते होंगे, पता नहीं अमृत वेला करते हो तो क्या देखते होंगे, कौन कैसा योग होता होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो जरूरी है उतना देखो, जरूरी है समय अनुसार जानना, समझ होनी चाहिए हर चीज की, लेकिन सारा दिन वो ब्रेकिंग न्यूज देखते देखते अंदर ब्रेक लग जाता है, योग नहीं लगता। इसलिए हम सब बहुत ध्यान दें, जो हमारे काम की बातें नहीं है, बाबा कहता हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, तो हम सब न सोचें, न देखें, न बोलें। जो मेरे काम की बातें नहीं है मुझे क्या करना। अगर हमें अपनी मंजिल को पहुंचना है तो हमें बहुत सही और सीधा रास्ता लेने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी किसी भी गली की तरफ देखने लगे और भटक गए तो मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे, भटक जाएंगे। इसलिए हम सबको वर्तमान समय अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य, बहुत स्वच्छ, निर्मल रखना है, अपने दिल की भावनाओं को बहुत भावना युक्त, विवेक ज्यादा नहीं चलाओ, विवेक वाले जो है ना वो अहम बहम में आ जाते है। विवेक जरूरी है, समय पर होना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है दिल वाले बच्चों की याद मेरे पास पहुंचती है। दिमाग वाले तो सिर्फ दिमाग लगाते रहते हैं, तो हम सिर्फ दिमाग से याद न करें, लेकिन बहुत भावनात्मक रूप से बाबा कौन है उसको पहचान करके याद करें, लेकिन बहुत भावनाएं। जब शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बनते हैं कितनी भावनाएं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे को देखते हैं, कमियों को देखते, कमजोरियों को देखते, चलते चलते वो नशा बाबा कहते हैं सोडा वाटर हो गया, खुशी गायब हो गई, नशा गुम हो गया। पुराने होते जाते हैं तो जो आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, उसकी बजाय जब अवगुण दृष्टि होती है, गंदगी अंदर चलने लगती है, तो सब प्रकार का, जैसे पेट्रोल के अंदर अगर कुछ भी मिक्स हो जाए, मान लो आज आपने गाड़ी चलाई, ले जा रहे हैं पेट्रोल, कहीं भराया, उसमें थोड़ा पानी भी मिक्स हो गया, इंजन फेल, इंजन खड़ा हो गया, कोई भी चीज मिक्स हो गई तो स्पीड डाउन हो जाएगी। अगर हम सचमुच अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, स्पीड को आगे ले जाना चाहते हैं, तो बहुत स्वच्छ ज्ञान का सही पेट्रोल इसमें डालना चाहिए। इधर उधर की बातें आजकल इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या लोग बुद्धि में डाल रहे हैं सबकी, और अगर सब प्रकार का कचरा इसके अंदर जाता रहेगा तो ये पेट्रोल जो है ना उड़ाएगा नहीं, रोक देगा रास्ते में। इसलिए अगर हमें इस मार्ग में उड़ना है, पहुंचना है मंजिल पर, अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, तो बहुत स्वच्छ दिल, स्वच्छ मन, स्वच्छ बुद्धि ध्यान दो। ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़ना है, ऐसे कोई दृश्य नहीं देखने हैं, ऐसा कुछ इंटरनेट पर नहीं देखना जो हमारी बुद्धि हमारे को अस्वच्छ बनाए, गंदा बना दे। संग की भी परहेज रखना, कोई पर चिंतन पर दर्शन करे, ऐसा संग नहीं करना जो आपके मन को व्यर्थ में ले जाए और उसमें बहुत सारी अस्वच्छता आ जाए। तो जो स्वच्छता है, निर्मलता है, वही एक दिव्यता है, वही हमारी अलौकिकता है, और वही ब्राह्मण जीवन में उन्नति का आधार है। तो हर्षित मुक्तता और स्वच्छता, ये हमारी प्रगति के लिए दोनों गुण बहुत बहुत आवश्यक हैं। इनका और गहरा अध्ययन करना, चिंतन करना, और चिंतन ही नहीं करना लेकिन अपने स्वरूप में ले आना। ओके, ओम शांति।
सुख के रचे महल,
शुभ संकल्पों के मोती।
खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल।